نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب کتاب میں سے ہم اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں. پیج نمبر 88 ہے اور اس میں سے پانچواں پوائنٹ ہم دیکھیں گے. اس وقت جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے انسان استاد سے زیادہ فائدہ لے سکتا ہے. اور اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ کیسے ایک اچھا یعنی شاگرد کیسے بن سکتا ہے. تو ابھی یہ بات ہے کہ استاد کے خلاف طبع فعل پر صبر کرنا پانچواں پوائنٹ ہے اس چیپٹر کا. پورے پچھلے دہرا دیتی ہوں تاکہ شاید آپ کو فائدہ ہو جائے. یعنی ٹاپک کا نام ہے استاد کے ادب اور عظمت اور احترام کے بیان میں. اس میں 13 باتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی جو ہم پڑھ چکے علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقویٰ کو منتخب کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے استاد کی فرما برداری اور توازو. تیسرا پوائنٹ ہے شیخ کی تعظیم کرنا اور ان کے شایان شان صفات بیان کرنا. چوتھا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ استاد کے فضل کو فراموش نہ کرنا. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم پانچواں پوائنٹ دیکھیں گے استاد کے خلاف طبع فعل پر صبر کرنا. مشکل اردو ہے اس کتاب کی کیونکہ پرانے دور کی لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کو ہلکا سا سمپلیفائی کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ استاد کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل، کوئی کام جو انسان کی طبیعت پہ بوجھل ہو اس پر صبر کرنا چاہیے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ساتھ ڈسکشن کریں گے. اگر استاد سے کوئی زیادتی سرزد ہو جائے یا اس کی ترش روی اور سوئے خلق اس کے حسن عقیدت اور اس کی صحبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، استاد کی ان حرکات کی تاویل کرے اور استاد کی زیادتی یا ظلم کے وقت عذر خواہی کرے، توبہ استغفار کرے اور استاد کے عتاب کو برداشت کرے، یہ استاد کی محبت کو برقرار رکھنے کا سبب ہے، طالب علم کی دنیا اور آخرت کے لیے نافع ہونے کا ذریعہ ہے. کسی بزرگ کا قول ہے، جو تعلیم کے لیے ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی جہالت کی اندھیریوں ہی میں رہے گا، اور جو اس کو برداشت کرے گا دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا. ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر تو اپنے طبیب سے بدعنوانی کرے گا، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، تو ہمیشہ بیمار ہی رہے گا، اور اگر شاگرد نے معلم سے بدتمیزی کی تو وہ ہمیشہ جاہل ہی رہے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طالب علم بن کر ذلت برداشت کرو گے تو مطلوب بن کر عزت پاؤ گے، یعنی تم ایسے بن جاؤ گے کہ پھر لوگ تمہیں طلب کریں گے. انہی کا قول ہے ایک شعر میں، اگر استاد اور ڈاکٹر کی تکریم اور تعظیم نہ کی جائے تو وہ خیر خواہی نہیں کرتے. معافی بن عمران فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی نے فرمایا، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، لوگ تیرے پاس دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اور آپ ان پر غصہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے پاس نہیں آیا کریں گے. تو کہنے والے سے فرمایا، اگر وہ میرے سوئے خلق کی وجہ سے اپنے نفع اور نقصان کو چھوڑیں تو وہ تیری طرح احمق ہوں گے. استغفر اللہ. حضرت امام یوسف رحمہ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا، پانچ چیزوں کی مدارت انسان پر واجب ہے. مدارت جیسے خاطر مدارت کرتے ہیں نا مہمان کی، ابھی انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گی. پانچ چیزوں کی مدارت انسان پر واجب ہے اور ان میں سے ایک وہ عالم بھی ہے جن سے علمی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر 5. کافی باتیں تو واضح ہو گئی ہوں گی الحمدللہ. पहली बात, अगर जुमलों की सूरत में हम इसको लिखें जैसा कि हम हर दफ़ा करते हैं, आप अपनी इस बुक के ऊपर ही किसी हल्के से कलर के साथ या पेंसिल से 1, 2, 3 कर सकते हैं, क्योंकि हर जुमला असल में एक गाइडलाइन होता है हमारे लिए। एक पहली बात है कि अगर उस्ताद से कोई ज़्यादती सरजद हो जाए, सरजद होना मीन हो जाए, अगर उस्ताद कोई ज़्यादती कर दे या उसकी तुर्श रवि, तुर्श ची कहते हैं खट्टे को, खटास, और रवि यानी बात करना, यानी ऐसी बात जो स्टूडेंट को अच्छी ना लगे, किसी वक्त उसने उससे थोड़े ऐसी टोन में बात कर दी कि स्टूडेंट को वो बात अच्छी ना लगी, और सुए खुल्क होता है बुरा अखलाक, इसके हुस्ने अकीदत और उसकी सोहबत की राह में रुकावट ना बने, यानी इवन अगर उस्ताद शागिर्द के साथ बुरे अखलाक से भी पेश आए तो ये बात स्टूडेंट को इस बात पे मजबूर ना करे कि वो अपने उस्ताद के साथ हुस्ने अकीदत ना रखे, यानी अकीदत जो थी उसको ख़त्म कर दे, और उसकी सोहबत की राह में रुकावट ना बन जाए, यानी कि उसकी सोहबत छोड़ दे। इसे क्या पता चलता है कि क्या, मतलब ज़ाहर जुमले से ऐसे लगता है कि क्या उस्ताद ज़्यादती कर सकते हैं। देखिए, उस्ताद ज़्यादती करे या सरजद हो, दोनों बातें आप सामने रखिएगा। इवन अगर उस्ताद ज़्यादती भी कर दे, और मेरा पूरा गुमान है कि उस्ताद माँ बाप की तरह कभी बच्चों के साथ ज़्यादती करते नहीं हैं, हाँ बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को भी ये लगता ज़रूर है कि हमारे साथ ज़्यादती की जाती है, और इसका अगर अमली तजुर्बा करना हो ना तो अपने बच्चों से आज जाके पूछ लीजिएगा, जिनके बच्चे हैं, कि बेटा मैं कैसी मम्मी हूँ। हर एक इसी गम में होगा जो अंदर से कमज़ोर है कि आप दूसरे बच्चे को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, सच है कि झूठ। और ये औरतों में भी रहता है, अगर एक मर्द की दो बीवियाँ हो ना तो हर बीवी को ये गम ज़रूर रहेगा कि मेरा शौहर दूसरी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, सच है ना। क्या आपके दिल में आता है कभी, सोचें ज़रा, आपकी अम्मी आपकी बहन से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं मेरे से नहीं। तो लिहाजा ये बात जो है, अगर कोई है तो ये सारी बातें एक जगह है, ये है कि नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये देखो कि मुझे क्या करना है, हाँ हुस्ने अकीदत और सोहबत की राह में रुकावट ना बने, नुकसान क्या होगा, अपना नुकसान होगा ना। फिर अगली बात देखिए कि उस्ताद की इन हरकात की तावील करे, ये क्या जुमला है, इसका मतलब ये कि अगर अपेरेंटली आपको कोई ऐसी बात लगती है कि मेरा उस्ताद मेरे से ज़्यादा दूसरे से मोहब्बत करता है, या मेरी डिसग्रेस करता है, या बद अखलाकी करता है, या मारता है, उस्ताद मारते भी थे पहले दौर में, आज तो हर तसव्वुर ही मुमकिन नहीं इसका कि कोई मारे, और माशाल्लाह स्टूडेंट मार खाने वाले भी नहीं हैं क्योंकि महज़ब हो गए, और बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनको ऐसे एटिकेट्स दे दिए। पहले दौर में लोग शुरू से दीन की तालीम पर आ जाते थे, दुनिया की तालीम नहीं हासिल किए होते थे, इसलिए उनको मार ज़्यादा पड़ती थी क्योंकि उनको अभी वो मैनर्स नहीं आए होते थे। लेकिन आज के दौर में मैं फील करती हूँ इस चीज़ को कि जितने लोग दीन सीखने आते हैं ना, वो पहले से तहजीब सीख चुके होते हैं किसी हद तक, कुछ चीज़ें कुरान के साथ भी आती हैं। तो अगर उस्ताद की कोई हरकत देखे तो तावील करे, तावील क्या है कि उसकी कोई वजह ढूँढे, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये सिर्फ उस्ताद के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। किसी का मैंने आपको कुलिया लिखाया था, या तो इमाम इब्ने कय्यम का है और या इमाम इब्ने तैमिया का, कहते हैं कि तुम किसी की कोई चीज़ देखो, कोई उसकी ख़राब चीज़ देखो तो तुम उसके उज़र लिखो, नहीं ये वजह होगी, फिर ये वजह होगी, अच्छा नहीं शायद ये नहीं होगी, अच्छा ये होगी, लिखो कॉपी में 99 उज़र्स लिखो, उज़र मीन उसकी रीजंस का रीजनिंग करना जिसको कहते हैं, और आखिर में फिर एक 100वें नंबर पर 100 नंबर पर क्या करो एक्सक्यूज़ कि ये वो वजह है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। सुभानअल्लाह कि मैं इतनी बातें करने के बावजूद मैं असल चीज़ पे नहीं पहुंच सका, तो लिहाजा उसको छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो कि यकीनन इसके पीछे हैर होगी, ठीक है। और फिर जुल्म के वक्त उज़र ख्वाही करे, यानी अगर उस्ताद मार देता है तो फिर उज़र तराही करे कि नहीं इस मार में कोई वजह होगी, मैंने सबक सही नहीं पढ़ा होगा, और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करे, और साथ ही साथ तौबा इस्तग़फार करे, और उस्ताद के अताब को बर्दाश्त करे। अताब कहते हैं डांट को, गुस्सा करना, जैसे गरजना बरसना अगर वो कोई ऐसी बात करता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, उस्ताद की मोहब्बत बरकरार रहेगी। क्या उस्ताद से मोहब्बत करना भी कोई नेमत है जी, हम तो ख़ुद मांगते हैं, اللہم انی اسلک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کرتا ہوں، تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ان عملوں کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دیں. تو اگر استاد کے لیے ہمارے دل سے محبت اٹھتی ہے نا، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. یہ وہی بچوں کی طرح، جن بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں رہتی نا، تو کیا وہ بچے بہت خوش ہیں؟ دوستوں سے مل جاتی ہے وہ محبت جو ماں سے ملنی تھی، باہر کے لوگوں سے مل جاتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا بالکل. پھر آگے فرمایا کہ طالب علم کی دنیا اور آخرت کے نافع ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی استاد سے محبت کا فائدہ نفع دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی، اس کو بھی ایک جملے میں لکھیں کہ کسی بزرگ کا جو قول تھا کہ تعلیم کے لیے ذلت برداشت نہیں کر سکتا، وہ ساری زندگی جہالت کے اندھیروں میں رہے گا. یہ کیا ہوتی ہے، آپ کیا سمجھے؟ لفظ ذلت سے ذرا ذہن میں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا. دیکھیے کہ ذلول لفظ کہتے ہیں نرم، زا لام لام، ذلت کا روٹ زا لام تا نہیں ہے، زا لام لام. ذلت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اتنا نرم کر لے، اتنا جھک جائے، جس کو آپ کہہ لیں نا کہ اوور پریشر بھی ہو جائے تو اپنے آپ کو اس کو برداشت کرے. پڑھنے کے لیے بیٹھے میں تھک رہے ہیں، کمر ٹوٹ رہی ہے، بیٹھنا ہے، ہاتھ تھک رہے ہیں، بار بار پسینے آ رہے ہیں، قلم چھوٹتا ہے، پھر انگلیوں کو تھوڑا چٹکھاتے ہیں، پھر قلم پکڑتے ہیں، پکڑو، اتنی دیر فوکس نہیں ہو پا رہا، ذہن بھٹک رہا ہے، پھر یہ ہے ذلول، یہ ذلول ہے کہ آپ استاد کے ساتھ کئی گھنٹے تک اگر وہاں بیٹھے ہو اور اگر وہ نہیں اپنی جگہ سے اٹھا تو آپ نہ اٹھو، بلا وجہ وہاں سے اٹھو نہ. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، کسی کام کو کرنے کے لیے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو مارنا، اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں اپنے نفس کو مارنا، تو نفس کو کچلنا، یہ مطلب ہے یہاں ذلت کا. ورنہ خدا نہ خواستہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیومیلیشن، ہیومیلیشن کے معنوں میں یہاں یہ نہیں ہے، ورنہ نقصان کیا ہوگا، ساری زندگی جہالت کے اندھیروں میں رہے گا. وہ کیسے؟ دیکھیے کہ جس کا ایک رویہ ہے نا، اگر وہ اپنے رویے کو نہیں بدلے گا تو وہ فیوچر میں بھی ایسی سوچے گا، وہ ایسے ہی کرے گا. جب تک وہ اپنا رویہ نہیں بدلے گا اس کو کبھی بھی خیر نہیں ملے گی. ہاں ہاں، جو برداشت کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا. پھر اگلی دو مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ استاد اور طبیب کا تقابل کیا گیا، ٹیچر اور ڈاکٹر دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کے ہاتھ میں آپ اپنی نبض دے دیتے ہیں، آپ نبض دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے، آپ کو انجیکشن لگائے، آپ کے گلے میں، آپ ذرا سوچیں، ذرا ایک لمحے کے لیے، مجھے سوچ کے بھی مزہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے، منہ کھولو، زبان نکالو، ہاں، پھر ایک روئی کے اوپر، وہ اسٹک کے اوپر روئی لگا کے آپ کے اندر سے ٹونسلس چیک کرتا ہے، ہاں، کبھی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک انجیکشن بھر کے لے آتا اور کہتا ہے چلو بیٹھو ادھر لیٹو، انجیکشن لگواؤ. پھر اس پہ بھی اس کو لگتا ہے کہ نہیں علاج نہیں ہوا تو وہ آپ کا پیٹ بھی کاٹے گا. کوئی ہلتا ہے کہ یہ کیا آپ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، سیدھی طرح کام کریں، دوا دے اور میں گھر جاؤں. وہ کیسے دوا دے دے جب اس نے آپ کو چھان پھٹک کے دیکھا ہی نہیں؟ بالکل یہی رویہ اگر آپ دیکھیں تو طبیب کا معاملہ جسم کے ساتھ ہے اور استاد کا معاملہ روح کے ساتھ ہے. اگر ایک استاد اور شاگرد کا کمیونیکیشن ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بیماریاں دور کرے گا؟ آپ بات نہیں کر پا رہے، یہ جو آپ کو بار بار کہا جاتا ہے نا، مائک پہ آئیں، شیئرنگ کریں، کیا سیکھا، کیا پڑھا، یہ اصل میں یہ وہ ڈائیگنوز کرنے کے مرحلے ہوتے ہیں. ورنہ جس طرح آج میں اور آپ اور ہم سب پڑھ رہے ہیں، اس میں تو کتنے پردے حائل ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کی شکل جانتے، نہ ہم جانتے کہ کون کس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، کیا معاشرہ ہے. اگر آپ اپنی یہ باتیں آ کے بتاتے ہی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کل کے سبق میں میں نے تیاری کیا کرنی ہے، کیا کمی ہے. آپ دیکھیں جب آپ لوگ مائک پہ آتے ہیں نا، میں آپ کی ٹون چیک کرتی ہوں. آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا کیا کیا نوٹ ہوتا ہے. آپ تو اس وقت بڑے جذباتی ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اپنی ایکسپیرینس دے رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آ کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ آتے کیسے مائک لینے میں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے سلام کرنے کے انداز کو میں نوٹ کرتی ہوں، میں کرتی ہوں، باقی ٹیچرس بھی آپ کے کرتے ہوں گے جن کے ساتھ آپ شیئرنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے بات شروع کرنے کا سٹائل، ٹون، پھر جو نکتہ آپ اٹھاتے ہیں نا، میں اس کو دیکھ کے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اتنی بڑی بات چھوڑ کے یہ کسی چیز پہ چلے گئے. اور بعض دفعہ کوئی اتنا اچھا نکتہ بتاتا ہے کہ میرے لیے اس سے ایک نئی سوچ کھل جاتی ہے اور مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی انہوں نے صحیح طرح سے بات سنی. अच्छा, कुछ लोग एक जुमला बार बार सब की तरह जो कोई एक बोलता है वो जुमला सारे ही बोलते हैं, हाँ वो जुमले मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ज़ाया हुआ। तो जब तक एक उस्ताद और शागिर्द का कम्युनिकेशन नहीं होगा आप नहीं सीख सकेंगे। और मैंने ये एक्सपीरियंस भी देखे लोगों के, मैंने लोगों से जुमले भी सुने कि सबसे बिग बैरियर जो इल्म के रास्ते में होता है वो डायरेक्ट उस्ताद और शागिर्द का कम्युनिकेशन होता है। अभी पिछले दिनों मुझे इधर ही किसी ने बताया, उन्हीं की गवाही दे रही जो मुझे, उन्होंने कहा कि तजवीद की क्लास उन्होंने शुरू किए कहीं और पहले पढ़े हुए हैं, बहुत जगह पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके उस्ताद ने उनको ये कहा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आप बैठ के सामने और आमने जब तक उस्ताद को आप सुनाएंगे नहीं, वो आपकी गलतियां नहीं निकालेगा, आपको तजवीद नहीं आएगी। और यही हाल दूसरी चीज़ों का है। तो बहरहाल उस्ताद और तबीब का मामला करीब करीब मिलता जुलता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो आखिरी बात थी इसको देख लेते हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि वाली कि सुफियान बिन उयैना ने कहा कि लोग आपके पास दुनिया के कोने कोने से आते हैं और आप उन पर गुस्सा करते हैं। अब आप इसे एकदम सोच रहे होंगे, अच्छा इमाम शाफ़ी तो फिर बड़े गुस्से वाले थे। देखिए उस्ताद का गुस्सा जो होता है ना वो डिसिप्लिन होता है। आम लोगों के गुस्से और इल्म वाले के गुस्से में बहुत फ़र्क होता है। आम लोग गुस्से में काम छोड़ देते हैं, वो गुस्सा करके काम की क्वालिटी कम करा देते हैं। उस्ताद का गुस्सा जो है वो उस काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। मसलन अगर लोग बातें कर रहे हैं तो क्या उस्ताद को खुशी होनी चाहिए? वो गुस्सा नहीं कर सकता। बीच में लोगों के सेल फोन बज रहे हैं और वो भी नए लोग नहीं, पुराने लोग हैं जो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स और गेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, ये फ़र्क रखना चाहिए। बाज़ उस्ताद नहीं रख पाते, कोई पहले दूसरे दिन आया और बीच में सेल बजा तो वो कहते हैं प्लीज़ आप बाहर चले जाएँ, किसी के साथ बच्चा आया कहा आप इधर से उठ जाएँ, ये नहीं करना चाहिए, ये बुरा अखलाक होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो इंसान एक ऐसा मामला महसूस करता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर आप देखिए कि उस्ताद के साथ चलना फिरना, यानी इस चीज़ को इतना मायूब समझा जाता था पहले दौर में कि उस्ताद के आगे ना चला जाए, और इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ है। उस्ताद कहाँ बैठा है, आप कहाँ बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, बराबर बैठना ही मुश्किल लगता है। ये जब दिल के अंदर आपके सच्चे जज्बात होते हैं ना, उसका इजहार आपकी ज़ुबान पे आता है। तो लिहाजा अगर वो गुस्सा करें तो उनको डरा रहे हैं कि देखो आपके इस गुस्से से लोग चले जाएंगे, इमाम शाफ़ी को। तो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है कि देखो अगर वो चले जाएंगे तो वो तुम्हारी तरह अहमक है, क्योंकि पहले दौर के उस्तादों के जो पढ़ाने के अंदाज़ थे, और आपको पता है कि इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके शागिर्द कोई 100, 200, 1, 2, 4, 10 नहीं होते थे, हज़ारों के मजमे होते थे। कभी किसी मौके पे आप इंशाल्लाह इसको भी मज़ीद सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैसा दौर था और लोग किस तरीके से इल्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ते थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर कोई यानी ऐसा करेगा तो फिर ये उसकी हिमाकत होगी। और ये जो आखिरी बात इमाम अबू यूसुफ़ की, पहली बात जो थी वो आखिरी से पहली थी, और अब आखिरी बात इमाम यूसुफ अबू यूसुफ़, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। इनका ये कहना कि पांच चीज़ों की मदारत, मदारत क्या होती है, खातर मदारत, और अगर इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में आपने समझना है तो फिर वो ये होगा कि बच्चे की जो आप मिनते नहीं सुबह कह रहे होते, अभी करके ही बैठे होंगे कुछ लोग, थे क्या खाओगे, अच्छा ये बना दो, अच्छा सीरियल भी नहीं खाओगे, अच्छा मैं ये बना दूँ, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा तू बता क्या बनाओ, इसको मदारत कहते हैं। यानी बिगड़े हुए बच्चे के जो लाड देखने या उसकी नाज बरदारियाँ जो होती हैं ना वो करना। तो यहाँ मदारत किसकी है कि इल्म वाले की मदारत करो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, उस्ताद के इरशादात और इफादात पर शुक्रगुजार होना। इरशादात इरशाद की जमा है, इरशाद रुश्त से है, रशदा भलाई को कहते हैं। तो रुश्त भरे हुए पैगाम, इरशाद किसको कहते हैं, ऐसी बातें जिनको हम सुन के भलाई पे आ जाएं। और हर उस्ताद की ये ख्वाहिश होती है कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे आला नमूने बने कि वो मुआशरे में भी एक अच्छा मुकाम पाएँ और अल्लाह ताला की निगाहों में भी अच्छा मुकाम पाएँ। तो अगर ऐसी कोई बात की जाए, इसमें आप देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका तालीम देने की बात, क्योंकि हर तालीम जो है वो किताबों से या कुरान और हदीस को पढ़ के नहीं दी जाती, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी होती हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती ला सकते हैं। और इफादात इफादतुन से है, इफ़ादा क्या होता है, जिससे फ़ायदा उठाया जा सके, यानी कोई भी ऐसी बात, इवन कोई आम बात जिससे इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है, या कोई बात जो उसने हमारी करेक्टर बिल्डिंग की, या फिर इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में भलाई लाते हैं, तो उस पर शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना, इसके बारे में क्या हुक्म है, पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। उस्ताद अगर किसी अच्छी सिफत की तरफ निशानदही करे या किसी बुरी सिफत पर तौबीख करे, तौबीख डांटना या पॉइंट आउट करना, इसका इंग्लिश में सिंपल मीनिंग है पॉइंट आउट करना, या किसी कमी या खामी की तरफ इशारा करे, तो उस्ताद का शुक्रिया अदा करे और उस्ताद के डांट डिपट को नेमते इलाही समझे, और ये समझें कि उस्ताद की नज़र तवज्जो इसकी तरफ मबजूल होती है, ये उस्ताद के दिल को मज़ीद इसकी तरफ मुतवज्जे करने का सबब बनेगा। उस्ताद अगर किसी दकीक अदब, दकीक कहते हैं बहुत थिक हैवी, यानी ना समझ में आने वाली बातें आप कह सकते हैं, यानी बस तो उस्ताद का लेवल बहुत ऊंचा होता है इल्म के हिसाब से और गुफ्तगू के एतबार से, लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन शागिर्दों का वो नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि जो उस्ताद की बात ज़रा बोझल पड़े, उस्ताद अगर किसी दकीक अदब या शागिर्द से सादिर शुदा, सादिर कहते हैं जो हो गया, यानी शागिर्द ने कोई काम कर लिया, सुदूर सदरा, शागिर्द से किए हुए किसी काम या किसी नक्स, नक्स मैंने उसकी कोई मिस्टेक या उसकी कोई शॉर्ट कमिंग, इस पर उसको तंबीह करे। तंबीह का लफ्ज़ नबा से है, नबा कहते हैं ख़बर देने को, तो तंबीह क्या हुई कि किसी को ख़बरदार कर दिया या उसको पॉइंट आउट कर दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया, और शागिर्द पहले से इससे मुतनब्बे हो तो शागिर्द ये बावर ना होने दे कि इसको इस बात का इल्म पहले से है, बल्कि इस पर उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करे, और इसका कोई उज़र हो तो उस्ताद को मुत्तले करने में कोई हर्ज नहीं, और ना बताने में मुफस्सिदा का ख़तरा हो तो बताना ही ज़रूरी है। लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इसको अगर हम अपने लफ्ज़ों में अमल के लिए पॉइंट आउट करते हुए अगर हम देखेंगे, तो पहली चीज़ इस टॉपिक में जो हमने सीखी वो क्या है कि इंसान को उस्ताद का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो रब का भी शुक्र नहीं अदा करेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ यह कि अगर उस्ताद किसी अच्छी चीज़ की तरफ निशानदेही करे, यानी कोई अच्छी आदत डालने की बात कहे, शागिर्द को पॉइंट आउट कर सकता है कि देखें आप में ये आदत अच्छी है या आप में माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, ये उसकी खूबी होगी ना, या किसी बुरी बात पर तौबीख करे, उसकी किसी मिस्टेक का इशारा दे दे, मसलन इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, कोई शागिर्द हैं तो बात करते हैं तो बहुत ऊँची आवाज़ से बात करते हैं ना, तो अगर उस्ताद उनको अगर प्यार से कह दे कि थोड़ा आहिस्ता बोलिए, या अगर किसी के बोलने में ज़रा सख्ती का अंसर है तो कहा जाए थोड़ी नरम अंदाज से बात कीजिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शागिर्द जब खड़े होते हैं तो सीने पे हाथ बांध लेते हैं ना, जैसे बिल्कुल इंसान कैजुअल मूड में खड़ा होता है, अब ये चीज़ बेअदबी के ख़िलाफ़ लगती है ना, अच्छा नहीं लगता, वैसे भी अच्छा नहीं लगता और अदब नहीं लगता, तो अगर वो कहीं कह दे कि इस तरह अकड़ के ना खड़े हों, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बैठते हैं तो टेक लगा के बैठते हैं चेयर्स को, अब अगर ऐसे तमाम मामलात जिसमें कोई इस मामले पे रहे तो उसको उस मौके पे फिर पॉइंट आउट किया जा सकता है। अब देखिए कि अगर इस बात को सिंपली समझ लिया जाए ना कि उस्ताद जो है वो माँ बाप ही है, यानी ये जो कहा गया कि ये एक रूहानी माँ बाप है, तो उसमें असल वजह यही है कि जैसे माँ बाप बच्चे की छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, तनकीद करते हैं, तो वो तनकीद उस बच्चे की दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं होती, इस ख़तरे के तहत भी होती है कि ये बच्चा अगर बाहर जाके ये काम करेगा तो मेरी भी इंसल्ट होगी और इस बच्चे का मुस्तकबिल भी ख़राब होगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर बातों को अगर सोच सीधी रख ली जाए तो फिर वो बातें बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगती हैं, और बल्कि उसका शुक्रिया अदा करें। ये शुक्रिया अदा करने वाली बात क्यों कही गई? इसलिए कि अगर एक छोटी सी जगह पे किसी से कोई गलत हरकत होती है, मिसाल एक क्लास रूम है 30-35 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से अगर उस्ताद ने टोक भी दिया किसी को तो 30 या 35 तक वो बात गई, उसके ख्याल में उसकी बड़ी इंसल्ट हुई, उसको शर्म आई, उसको बुरा लगा, लेकिन 30 या 35 लोगों में बुरा लगा ना। लेकिन अगर उस्ताद उसके उस रवैये की सलाह नहीं करेगा तो कल ज़िंदगी में मुख्तलिफ मैदान ज़िंदगी के जब आते हैं तो इंसान वही इंसान वहाँ जाके वो हरकत करेगा, उसी तरह बात करेगा, तो फिर वो बात हज़ारों को पता चलेगी। तो शुक्रिया तो इस बात पे करना है कि उस्ताद मुख्तरम आपने मुझे थोड़ी जगह पे टोक के अपनी सलाह की तौफीक दी। इसको मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज़ में इस तरह देखती हूँ, कुरान पाक पढ़ना। बाज़ दफ़ा जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उनको कहा जाए कि आप सुनाएं तो वो हेजिटेंट करते हैं ना कि नहीं कैसे पता चले, क्यों सबको पता चलेगा, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने देखा समटाइम 5-10 लोग भी रूम में होते हैं ना तो कुछ लोग नहीं सुनाना चाहते, उनको शर्म आती है, गलती होगी या हमें ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता। अच्छा, अब नहीं पढ़ना आता तो इसका मतलब ये कि आप इन 10 लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। लेकिन बाहर आप कहीं भी ना पढ़ें, एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब आप तन्हाई में पढ़ते होंगे, अल्लाह ताला आपका कलाम सुनता होगा, तो उस वक्त कैसा लगता होगा? क्या उस वक्त इंसान अपने आप को फिर बचा सकता है शर्मिंदगी से? तो बस यही सोच लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद उस्ताद की डांट डिपट को नेमत इलाही समझे। नेमत क्यों? आप ज़रा नेमत का मफहूम देखें तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह वाज़े हो जाएगी कि उस्ताद की डांट नेमत क्यों लगती है। इसलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बार बार जो एहसानात याद दिलाए वो क्या था? या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल मेरे वो इनामात याद करो जो मैंने तुम पे किए। और जहाँ भी तफसीर हुई इन आयात की, आपको आलमोस्ट कभी तफसील से कभी मुफसल तौर पे यही बताया गया कि यहाँ नेमत अम्बिया मुराद है, नबूवत आई, नबी आए, उन्होंने उनको अल्लाह ताला की मर्ज़ी बताई। तो क्या पता चला कि किसी की हिदायत का इंतज़ाम हो जाना अल्लाह की एक नेमत होती है। जिस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी होता है उसके लिए अल्लाह ताला किसी ऐसे इंसान को मुकर्रर कर देता है जो उसकी इस्लाह करे। और ये बात जो लिखी है कि उस्ताद की नज़र तवज्जो इसकी तरह मबजूल हो जाए, ये तो बड़ी प्यारी बात है। आप देखिए कि हर एक को तो इंसान कभी नहीं टोकता ना, और कभी केयर भी नहीं करता। इसकी सिंपल सी मिसाल माओ को बहुत अच्छी तरह समझ आ सकती है कि कहीं बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी को नहीं पता किसका क्या बच्चा है, लेकिन आप देखिए कि उस 20-25 बच्चों के ग्रुप में माँ की नज़र अपने बच्चे पे होती है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ज़रा उसको कोई गलत काम करता देखेगी ना, फ़ौरन आंख के इशारे से कहेगी, कभी हाथ से कहेगी, कभी मुंह पे उंगली रखेगी चुप करो, कभी उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बोल भी देगी, कान से पकड़ेगी। तो क्या वो बच्चे के लिए बुरी बात है? उसको तो खुशी होगी ना कि मेरी माँ की तवज्जो मुझ पर थी। ठीक है, तो यही बात है कि किसी की तवज्जो होती है तो कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करता है। और आप देखिए, ये किसी को क्रिटिसाइज़ अगर कोई करता है तो ये उसका एक बहुत बड़ा एहसान भी होता है, इसलिए कि इसके लिए भी वक्त लगता है। आप जब अपने किसी बहुत काम में मसरूफ़ होते हैं तो किसी दूसरे की किसी खामी को चुनना भी आपको मुश्किल लगता है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा आप हमें करेक्ट कर दें, हमारे ज़रा गौर सुन से देखें हम क्या करते हैं, हमारी इसलाह करें, तो जहन पे एक बोझ आने लगता है कि अच्छा फिर आप इनको गौर से देखना पड़ेगा, इनके ऊपर तनकीद करनी पड़ेगी। तो ये भी एक किस्म का काम हो जाता है इंसान के जहन पर। तो कहा कि इससे फिर वो अपने आप को हल्का ना समझे। और ये बात उस्ताद के दिल को मज़ीद इसकी तरह मुतवज्जो करने का बाइस बनेगा, क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक छोटी सी बात बताई, लेकिन वो इतनी बड़ी बात है कि बाज़ दफ़ा इंसान की पूरी ज़िंदगी पे छा जाती है। और वह सूरत इब्राहिम की गालिबन आयत नंबर 7 है, वाइज तज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और जब तेरे रब ने पुकारा तुमको कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करोगे ना क़दरी करोगे तो फिर बेशक मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। अब ये जो चीज़ है ना, नेमत की कदरदानी करना नेमत को बढ़ाता है, ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को आप खाना पका के भेजते हैं और वो आपको जवाब में कहता है बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया, तो आप अगली दफ़ा ख़ुद भेजेंगे ना, अब उसके लिए स्पेशली डालेंगे कि उसको मज़ा आया। ये कोई तारीफ़ नहीं होती, ये कोई चापलूसी भी नहीं होती, बस आपको पता चल गया कि मेरे हाथ का ये खाना उसको अच्छा लगता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं अपने लिए पका रही हूँ, बीच में मैं उनके लिए भी कुछ डाल लेती हूँ। लेकिन अगर आप किसी को कुछ भेजें और उसके जवाब में वो खाना आपको ट्रैश कैन में पड़ा हुआ दिखे, बिन में पड़ा हुआ दिखे, तो आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे कि इसको पसंद नहीं आया, और बाज़ मुँह पर भी कह देंगे कि जी हम नहीं खाते, हमें अच्छा नहीं लगा, कभी भी नहीं दोबारा भेजेंगे ना। तो ये है नाशुक्री और कुफर का फ़र्क। अल्लाह ताला उन लोगों से नेमत को छीन लेता है जो नाशुक्रेपन का इजहार करते हैं, और उन लोगों की नेमत बढ़ जाती है जो शुक्र का इजहार करते हैं और नाशुक्री नहीं करते। और ज़िंदगी में इंसान अगर अपने रवैयों को ग़ौर से देखे तो उसके अंदर बहुत जगह उसको ये असूल कार फरमा दिखता है कि अगर आप किसी की डांट पे खुश होते हैं और उसको अपनी इस्लाह का सबब समझते हुए उस पर दिल की खुशी महसूस करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा भी आपको अपनी नज़र में रखेगा। और आप अगर एक दफ़ा कह दें कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पे नज़र रखने की, कोई ज़रूरत नहीं आप मुझे इतना डांटें, तो अगला कहेगा चलो मेरी जान से गई, मेरी बला से, मुझे क्या ज़रूरत है आपकी इस्लाह की फ़िक्र करूँ। तो लिहाजा इससे फिर इंसान अपनी इस्लाह से महरूम हो जाता है। फिर अगली बात, ये जो मुश्किल जुमला था कि अगर किसी दकीक अदब, अदब कहते हैं मैनर को, और दकीक ज़रा बहुत दकीक, कोई ऐसा काम होता है कि उस्ताद की निगाह ज़्यादा तेज़ होती है, शागिर्द की इतनी तेज़ नहीं होती। बिल्कुल वही बच्चे और माँ बाप वाला मामला दोबारा दोहराऊंगी कि बाद दफ़ा बच्चे को बिल्कुल नहीं पता चलता कि मैंने क्या गलत किया है, वो अपने सामने बिल्कुल ठीक कह रहा होता है, लेकिन माँ को समझ आ रही होती कि नहीं देखो ये ढंग से नहीं खा रहा, देखो इसका गिर भी रहा है, देखो इसने हाथ भी अपने भर लिए, उंगलियों पे भी खाना लग गया। बच्चे की नज़र फ़र्क है, माँ बाप की नज़र फ़र्क है, तो इसी चीज़ का फ़र्क बाज़ दफ़ा बच्चे के जहन में ये ख्याल डाल देता है कि मेरी माँ ने मुझे बेजा तौर पर टोक दिया या डांट दिया, और वो उस बात पर गुस्सा कर लेता है, और नतीजा क्या निकलता है कि वो सोचता है कि मेरे ये माँ ने मुझे बिला ज़रूरत इस चीज़ में टोका। हालांकि हकीकत क्या है कि अगर उस्ताद किसी के दकीक अदब पर या शागिर्द से हुए हुए किसी काम पर तनकीद कर दे और शागिर्द पहले से उससे मुतनब्बे हो, यानी शागिर्द को भी अपनी गलती पता हो, फिर भी उसको इस पे बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी मौके पर ऐसा होता है ना, कोई हमें कुछ कहने लगता है, अभी आधी बात कहते हैं ना, हम कहते हैं हाँ हाँ पता है, मुझे पता है, जानती हूँ मैं, ये भी मैनर के ख़िलाफ़ है। बाद जब आपको कोई बात सुनाने लगता है, ये कहानी या हदीस या आपने सुनी होती है, एक रवैया क्या फ़ौरन टोक दे, जी जी सुनी हुई आगे चलें जी, कई दफ़ा तो सुनी हुई है ये बात आगे सुना रहे हैं, कहा नहीं अगर पहले से भी पता हो तो उसको उस पर सुन लेना चाहिए और उस पर शुक्रिया अदा करे। और अगर कोई उज़र हो कि किस वजह से मेरे से ये हरकत हुई या इसमें मैंने ये काम इस तरह क्यों न किया, तो फिर उसको अपना उज़र भी बता दे। ना बताने में अगर किसी मुफसिदा, मुफसिदा होता है फसाद, फसादा कहते हैं बिगड़ने को, डीकम्पोज हो जाना, यानी उस्ताद को कोई हकीकी बात जो वो महसूस करता है कि ये चीज़ ठीक नहीं और इसको बता देने से फ़ायदा होगा तो बता देना चाहिए। अदब का और रिस्पेक्ट का ये कोई तकाजा नहीं कि ये सोच के कि मेरे दिल में रिस्पेक्ट बहुत है मैं ये चीज़ ना बताऊं, और नतीजा क्या होगा कि फिर उसको वो चीज़ नहीं पता चलेगी, लेकिन आपके दिल में वो चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि फिर एक वक्त आएगा कि आप उसको फिर गलत तरीके से कहेंगे जो आप अच्छे तरीके से कह सकते थे। तो पूरी बात का ख़ुलासा क्या निकला कि शुक्रगुजारी और आजिज़ी। एक और पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक इंशाअल्लाह ताला। सातवां पॉइंट है उस्ताद से इजाज़त तलब करने के आदाब। आम दर्स के अलावा औकात में बिला इजाज़त ना आए, चाहे उस्ताद अकेला बैठा हो या इसके पास मौजूद हो, इजाज़त चाहने पर इजाज़त ना मिले तो वापस चला जाए, बार बार इजाज़त तलब ना करें। हाँ अगर इसके आने के मुतालिक उस्ताद के बाखबर ना होने का शक हो तो भी तीन मरतबा से ज़्यादा दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए, और दरवाज़ा खटखटाने में भी उस्ताद का अदब मलहूस रहे, मलहूस लिहाज, लिहाज में रहना यानी केयरफुल रहे। पहले नाखून से आहिस्ता आहिस्ता खटखटाए, फिर उंगलियों से, फिर कवाड़ से, कवाड़ क्या होता है? जैसे कुंडी, पहले दौर में जो दरवाजों के ऊपर कुंडियां लगती थी ना, तो उसको लेके तो हल्का हल्का टिक टिक करे। हाँ, अगर उस्ताद की नशिस्तगाह बैठने की जगह दरवाजे से दूर हो तो इतनी आवाज़ में खटखटाए जो उस्ताद तक पहुँचे। यानी मकसद ये है कि बात उस तक पहुँच जाए, उसको पता चल जाए कि आप उसको मिलने के लिए बाहर खड़े हैं, और इजाज़त मिल जाए, और मिलने वाले जमात की सूरत में हो तो बड़ा सबसे आगे हो और सलाम अर्ज़ करे, फिर दूसरे साथी सलाम करें। उस्ताद के पास अच्छी हैयत कहते हैं गेटअप, पाक और साफ़ सुथरा होकर जाना चाहिए। नाखून वगैरह सही करके जाए और कोई बदबूदार चीज़ वगैरह साथ ना हो। खसूसन सबक के लिए जाना हो तो इसका इख्तमाम ज़रूरी है, क्योंकि ये मजलिस ज़िक्र और इल्म की मजलिस है, यानी ये मजलिस ज़िक्र और इल्म है। उस्ताद के पास अगर कोई बैठा हो और बातें कर रहा हो तो खामोशी के साथ बैठ जाए, या उस्ताद नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्र में मशगूल हो या लिखने पढ़ने में मसरूफ़ हो और वो इसको छोड़ दे तो कलाम करने में पहल ना करे और कलाम को तवील ना करे। ज़रूरत की बात करके सलाम करके जल्दी उठ जाए। हाँ, अगर उस्ताद इसको ठहरने का हुक्म दे तो ठहर जाए, फिर ज़्यादा देर ना ठहरे। बेहतर यह है कि उस्ताद के पास ऐसे वक्त में जाना चाहिए कि जिसमें वो मसरूफ़ ना हो। सोने या खाने या किसी और मसरूफियत के वक्त इसके पास ना जाए, बल्कि फारिग वक्त में जाए, ताकि खूब इन शराख कहते हैं शरह सदर, सीना खुलना, यानी जो बात हो दिल में खुल के, या मतलब तफसील से बात हो सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर कर सके, ताकि खूब इनशराख के साथ जो कुछ कहना हो कह दे। उस्ताद को अगर अपनी नशिस्त पर ना पाए तो इंतज़ार करे, ताकि सबक ज़ाया ना हो। इसलिए सबक का कोई बदल नहीं। उस्ताद को बाहर निकालने के लिए दरवाज़ा ना खटखटाए। अगर आराम फरमा रहे हों तो बेदारी तक सब्र के साथ इंतज़ार करें या जाकर दोबारा आ जाए, मगर सब्र करना ज़्यादा नफ़ामंद है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अन्हुमा क्यों आया? क्योंकि अब्बास भी बाप भी मुसलमान थे और अब्दुल्ला भी, तो जब किसी सहाबी का बाप भी मुसलमान होता है तो अमूमन उनके नाम के साथ अन्हुमा लगाया जाता है। कैसी सवाले औलाद है कि अपने माँ बाप के लिए भी एक अच्छा ऑनर दिलवाती है, लेकिन वो सहाबे कराम जिनके बाप मुसलमान नहीं हुए थे उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तलबे इल्म के लिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाहु अन्हु के दरवाज़े पर बैठे रहते। ये कौन थे? कातिबे वही थे, अल्लाह के नबी की के कहने पे वही की किताबत करते थे। जब तक वो बेदार ना होते वहीं बैठे रहते। लोग कहते इनको उठा ना दें, फरमाते नहीं, बसा औकात यानी अक्सर काफ़ी ज़माना बैठे रहते हैं, यानी बहुत देर बैठ के काम करते हैं। अच्छा, ये इब्ने अब्बास का अमल है कि वो काफ़ी देर भी बैठे रहते लेकिन उनको डिस्टर्ब ना करते। उस्तादा के साथ असलाफ का यही तर्ज अमल था, बेवक्त उस्ताद से पढ़ाने का मुतालबा ना किया जाए और ना आम दर से हटकर अपने लिए मखसूस वक्त तलब करे, अगरचे बड़ा रईस क्यों ना हो। बास दफ़ा उस्ताद हया की वजह से इनकार तो नहीं कर सकता, हया से मुराद जहाँ मुरव्वत है, नो नहीं कह सकना, मगर इससे तालिब इल्म को फ़ायदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, किस दौर की बातें लगती हैं। अब देखिए कि इस्लाम में यानी पुराने अदवार को अगर आप देखें तो ये सारी बातें जिसको आज हम पढ़ रहे हैं इसमें तो ये होती थी, लेकिन आज तो ये कहानियाँ लगती हैं ना, क्योंकि आज चारों तरफ जो कल्चर फैलाया गया उसमें उस्ताद को भी एक किस्म का पेड सर्वेंट ही समझा गया, और नाम लेना, बात करना, जो तहजीब है इर्द गिर्द वो तो दिखती ही है। तो देखिए कि आप अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चे हों, कॉलेज जाने वाले हों या यूनिवर्सिटी वाले हों या फिर किसी जगह दीन सीखने जाते हैं, आप उनको ये सारी बातें ज़रूर सिखाएं। इतना फ़ायदा होगा इससे कि उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखरत भी। बड़ों ने जो एक बात कही वो दुरुस्त लगती है कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, जिनके मैनर्स अच्छे होते हैं अल्लाह ताला उनके नसीब आला कर देता है, और जब मैनर ख़राब होते हैं तो नसीब बना हुआ भी बिगड़ जाता है। अगर इंसान के एटिकेट्स और मैनर्स अच्छे होते हैं तो वो इल्म में कुछ ज़्यादा पुख्तगी ना भी रखता हो, इसके बावजूद वो खैर ले लेता है। लेकिन इल्म के अंदर पुख्तगी रखने वाला भी अगर उसके मैनर्स अच्छे नहीं होंगे तो बाज़ दफ़ा फिर वो उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता। अगर ये सारे पॉइंट्स आप नंबर 1-2 लगा लें, बहुत आसान था चैप्टर, मुझे नहीं लगता अगर आप समझते हैं कोई बात इसमें समझ नहीं आई तो मैं दोबारा भी बता सकती हूँ, लेकिन आप करने का काम बस यही करिएगा कि जितनी छोटे छोटे जुमले थे वहाँ हमेशा जैसे आपसे बोलती हूँ पॉइंट नंबर 1-2 लगा लें। मसलन आम दर्स पहला है तो उसमें 1 लगा लें, चाहे उस्ताद अकेला बैठा हो इजाज़त लेके जाए, कोई उसके पास तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें। और ये कितना खूबसूरत अंदाज़ है ना कि पहली दफ़ा जाए तो नाखून के साथ नॉक करे, हैं हल्का ऐसा ऐसा, फिर उंगलियों से, फिर कबाड़ों से। ये बातें बाहर से नहीं आती, आप कभी भी किसी की रिस्पेक्ट बाहर से नहीं कर सकते। फोर्सफुली आपको कोई कह दे उस्ताद के आने पर खड़े हो जाओ, आप देखिए कुछ स्कूलों में ऐसा होता है उस्ताद के आने पर खड़ा कर दिया जाता है, ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोग कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर जब बात नहीं बनती ना, और अंदर जब दिल के अंदर वो कदर नहीं आती ना या उस नेमत का एहसास नहीं होता ना, तो फिर इंसान ये ज़ाहरी चीज़ें कर भी नहीं सकता। और बाज़ दफ़ा कर भी लेता है, बज़ाहर कर भी लेता है, लेकिन वो दिल की बात गालिब आ जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए और हम हकीकत में इन चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं। अब यहाँ चूँकि ये ज़्यादा बातें तो ऑन साइट बैठ के करने वाली होती हैं ना, क्योंकि पहले दौर में जब ये किताबें लिखी जाती थी तो उस वक्त में आपको पता है कि ये तसव्वुर नहीं थे कि उस्ताद कहीं दूर हो और शागिर्द कहीं दूर हो, और हज़ारों मील के फासले से भी लोग सीखते थे। लेकिन अब इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आप कहीं भी इल्म की महफिल में जाते हैं, दर्स में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, तो ज़रूर अपने आप को ठीक ठाक हुलिये में रख के जाएँ। आप अब देखिए ये जो बात मैं पढ़ रही थी तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी ना कि नाखून वगैरह साफ़ करके जाए, सही करके जाए, कोई बदबूदार चीज़ वगैरह साथ ना हो। ये ऐसे नहीं लगता कि हैंडल विद केयर, बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई किसी मरीज़ को विज़िट करने जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो बहुत केयरफुल होता है, कदम भी उठाता है आराम से, सो तो नहीं रहे, खटका भी नहीं करता, सो रहे हैं तो उनको जगाना भी नहीं। बिल्कुल मैं जब ये पैराग्राफ पढ़ रही थी तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, या जैसे अपना बच्चा सो रहा होता है तो माँ बड़े चुपके चुपके दबे दबे कदमों से आके उसको देखती है, सो रहा है ना तो बस अब इसको छेड़ूँ ना, दरवाज़ा थोड़ा और बंद कर देती है, पर्दे भी खींच देती है ताकि इसकी आँख ना खुले, बस ये यानी आराम से लेटा रहे। या कोई बहुत बुज़ुर्ग घर में हो तो जब वो इस तरीके से आराम करते हैं तो उनका हम ये ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें अंदर की तर्जुमानी करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब के इस सीखने को हमारे लिए एक बेहतरीन सदका जारिया बना ले, और हम जो बात भी कहें और सुने उसको हमारे अमल में आसान कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।